नमस्कार भारत, 2 मई दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। अभी भी धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल, आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने नया कुछ नहीं किया, पुरानी योजना का नाम बदलकर उज्ज्वला रखा।
सीतापुर और लखीमपुर के कुछ एरियाज में 1 लाख फ्री LPG कनेक्शन बांटे गए थे। प्रधानमंत्री जी उसी योजना को नाम बदलकर अपनी योजना बता रहे हैं।
पटना में कन्हैया को काले झंडे दिखाने वालों के साथ मारपीट, भाजपा ने आलोचना की।
माले से जुड़ा हुआ चंद्रशेखर, वह भी JNU का अध्यक्ष था, उसी समय राजद की सरकार और राजद के नेताओं पर आरोप लगा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, आज उसी नेताओं के साथ कन्हैया जाकर के मिल रहे हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम आज भी जारी रहेगा। राज्य का 2,269 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में लगाए गए हैं और 40 मास्टर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। स्थिति पर निगरानी के लिए NDRF, SDRF, राज्य पुलिस, वन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को मिलाकर कुल 6,000 लोगों को तैनात किया गया है। प्रशासन का दावा है कि आग की रफ्तार में कमी आई है और 1-2 दिन में स्थिति में काफ़ी फर्क आ सकता है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पास कल रात दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक सतीश पांडे के मुताबिक इस हादसे में करीब 70 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन के 4 AC कोच, 2 स्लीपर कोच और 2 जनरल कोच पटरी से उतर गए थे। घटना की जानकारी होने पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष पर रोक लगाने के प्रयासों में वो रूस की मदद लेंगे। सीरिया के अलेप्पो शहर में जारी संघर्ष पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक प्रयासों के लिए जॉन कैरी जिनेवा में हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद अहम दौर है। बीते 10 दिन के दौरान अलेप्पो में करीब 250 लोगों की मौत हुई है। जॉन कैरी ने कहा, संघर्ष विराम लागू करने के तरीके तलाशने के लिए हमारी आज और कल बैठकें होनी हैं। ऐसे में ये अहम वक्त है। हम रूस के सहयोग की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि सीरिया की सरकार रूस की बात सुनेगी और संयुक्त राष्ट्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो अपेक्षा है उस पर अमल करेगी। ये थे जॉन कैरी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर इराक की राजधानी बगदाद में संसद के बाहर जमे प्रदर्शनकारी वहां से हटने लगे हैं। शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के कार्यालय के ऐलान के बाद प्रदर्शनकारियों ने ग्रीन जोन को खाली करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर सद्र के समर्थक थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार सुधार लागू करने में देरी कर रही है। इसके पहले इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने शनिवार को संसद में दाखिल होकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव डॉयचेलैंड यानी AfD ने साफ तौर पर इस्लाम विरोधी नीति अपना ली है। पार्टी के स्टटगार्ड में हुए सम्मेलन में कहा गया कि इस्लाम जर्मनी से संबंध नहीं रखता। सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय से संवाद बढ़ाने का प्रस्ताव रखने वाले प्रतिनिधि को विरोध झेलना पड़ा। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। काले काले बादलों को लुभाने वाले उत्तराखंड के हरे भरे जंगल अभी भी सुलग रहे हैं, जहां 1-2 दिनों में हल्की फुल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। और इस बीच सेना के हेलीकॉप्टर यहां वहां से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी बुझ जाती है और कभी दोबारा भड़क उठती है। इस कवायद के दौरान नए इलाकों में आग फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। जंगलों में जो तबाही आग की वजह से अभी तक हो चुकी है उसका सटीक आकलन होना अभी बाकी है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में तैनात वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जीरो विजिबिलिटी के चलते रविवार सुबह अपना काम नहीं कर पाया था। रविवार दोपहर बाद उसने पानी लेकर उड़ान भरी और गढ़वाल के धधकते जंगलों पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन हवा के साथ आग का दायरा भी फैलता जा रहा है और इस काम में तैनात वनकर्मियों, स्थानीय लोगों, एनडीआरएफ, सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। एक जगह आग बुझ भी जाती है तो फिर दूसरे हिस्से में भड़क उठती है। हालांकि प्रशासन को उम्मीद है कि आग की रफ्तार में कमी आएगी और अगले एक दो दिन में इसमें काफी फर्क आ सकता है। उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक राजेंद्र कुमार,
कंट्रोल रूम बनाया गया है जिनकी टोटल संख्या लगभग 40 है। कंट्रोल रूम पर हमारे कर्मचारी रहते हैं। फायर के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर इसे जो फील्ड में हमारे क्रू मेंबर हैं उनको जो है ये दिया जाता है। हमारे पास बड़ी संख्या में हमने क्रू स्टेशन बना रखे हैं। हर क्रू स्टेशन पर 4 से 6 आदमी स्टाफ भी रहता है। जब भी कोई फायर की वायरलेस से सूचना प्राप्त होती है तो उस सूचना के आधार पर हमारा जो स्टाफ है उस गांव में जाता है, अग्निशमन का कार्य करता है।
इधर मई दिवस के मौके पर देहरादून स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बेशक कुछ प्रयास हुए हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। रावत ने संकेतों में इस बात पर भी नाराजगी जताई कि राज्यपाल को उन्होंने जो सुझाव भेजे थे उन सुझावों पर गौर नहीं किया गया। रावत ने राज्य को अग्नि आपदा पीड़ित घोषित करने की मांग एक बार फिर उठाई। इस बीच कांग्रेस ने भी जंगल की आग, पीने के पानी की किल्लत और सूखे को लेकर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर उपाध्याय,
उत्तराखंड पर नहीं पूरे देश पर इसका असर पड़ेगा और उत्तर भारत पर तो बहुत ही असर पड़ेगा, उन 60 करोड़ लोगों की जिंदगी पर जिनकी जिंदगी उत्तराखंड के पानी पर निर्भर करती है। पूरा का पूरा उत्तराखंड के जंगल आज जल रहे हैं।
आग से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के 500 पुलिसकर्मी भी संवेदनशील स्थानों में तैनात किए जा रहे हैं। आज भी वायुसेना के 2 विमान अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरेंगे और पानी से जंगलों की आग बुझाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि आग के फैलाव को देखते हुए वायुसेना और हेलीकॉप्टर भी इन इलाकों में उतार सकती है। इस बेकाबू आग ने ये साबित कर दिया है कि देश में कुदरती आग से बचाव और उस पर नियंत्रण के उपाय देश में किस लचर स्थिति में है और जंगलों की सुरक्षा के नारे कितने हवाई हो चले हैं। ये इतने हवाई हैं कि इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के सैटेलाइट चित्रों की भी परवाह नहीं रहती जो लगातार भेजे जा रहे हैं और जिनमें धधकते जंगलों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF खासी मशक्कत का दावा कर रहा है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने NDRF के महानिदेशक OP सिंह से बात करके उनके प्रयासों के बारे में जानना चाहा।
अभी हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा एंड चमोली में, और हमारे 14 लोकेशंस में आज ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें 6 पौड़ी गढ़वाल में, 3 चमोली में और 5 जो है वो अल्मोड़ा में।
अब तक कितनी सफलता मिल पाई है?
सफलता मिली है 427 प्लेसेस से, जो 28 अप्रैल को 29 अप्रैल को सैटेलाइट इमेजरी से स्टेट गवर्नमेंट ने कैप्चर किया था, जिसमें कि छोटे बड़े सभी प्रकार के फायर थे वहां पे 427 फायर प्लेसेस, जिसमें कि छोटे फायर 3-4 मीटर तक का भी फायर उसमें इंक्लूडेड था। अब उसकी संख्या घट के 110-115 हो गई है। NDRF की टीम जो है इन 14 लोकेशंस में ट्रेडिशनल मेथड से, जिसमें कि हमारा टोटल प्रायोरिटी था, हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरीके से फायर को स्प्रेड होने से रोक सकें इनहैबिटेड एरिया में या ऐसे में, तो हम लोगों ने एक्सपर्ट एडवाइस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का लेकर और जितने भी लोकल वॉलंटियर्स हैं, SDRF है, फायर पीपल हैं, फॉरेस्ट पीपल हैं, उन सबों की मदद से एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट्स किया।
लेकिन आग के कुछ नए इलाकों में फैलने की बात कही जा रही है।
नए इलाके भी हो सकते हैं लेकिन इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां हो रहा है वहां वहां हम लोग टीम्स अपनी भेज रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से NDRF काम कर रही है।
NDRF के महानिदेशक OP सिंह से बात कर रहे थे निखिल रंजन। अब इसे कुदरत की मार कहें या इंसानी चूक का नतीजा कि जहां एक तरफ हरे भरे जंगल आग की वजह से तबाह हो रहे हैं, वहीं भारत के कुछ हिस्से बिना किसी आग के बस इसलिए सुलग रहे हैं कि वहां जमीन के अंदर बाहर पानी सूख चुका है। सूखे की इसी समस्या पर कल दिल्ली में खेती किसानी, पानी और पर्यावरण मामलों के जानकारों ने विचार मंथन किया, जिसमें कई राज्यों के किसान भी मौजूद थे। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने वहां कुछ किसानों से बात की और सूखे की वजह से पैदा हुई उनकी समस्याओं को समझना चाहा।
साथ दो किसान छत्तीसगढ़ से ठाकुर राम गुलाम और हरियाणा से रमेश कुमार जी। सबसे पहले ठाकुर राम गुलाम जी, छत्तीसगढ़ में सूखे की क्या स्थिति है अभी?
छत्तीसगढ़ में पानी की कोई इंतजाम नहीं है, आदमी के लिए, पशु पक्षी के लिए, खेती के लिए जो राहत कार्य चल रहे हैं वो भी फ्रॉड है, कागज में चल रहा है, वहाँ कोई काम नहीं है किसानों के पास।
रमेश कुमार जी, हरियाणा की क्या स्थिति है? वहाँ पर सूखाग्रस्त अभी शायद सरकार ने नहीं कोई किसी इलाके को घोषित किया है, लेकिन सूखे की क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या सूखा है?
देखो सर, हरियाणा में हर कोई जानता है कि अब की बार बारिश की शायद बूंद भी नहीं पड़ी, और किसान की वैसे पूरे हरियाणा को तो नहीं कह सकते, लेकिन राजस्थान से सटा जो प्रदेश है, भिवानी, महेंद्रगढ़, अपना नारनौल, रेवाड़ी, इन इलाकों की बहुत भयावह स्थिति है। वहाँ पे कहीं कहाँ थोड़ी बहुत जगह पानी है नीचे ट्यूबवेल का, वो भी नीचे जाता रहा जा रहा है। किसान करे तो क्या, किसान तो हर साल 50-100 फीट नीचे बोरवेल करवाता है, उससे पानी खींच रहा है, नहीं तो मर जाएगा। और वो भी ये आने वाले 1-2 साल में अगर यही हालात रहे तो जो लातूर है महाराष्ट्र का, जो बुंदेलखंड है यूपी का, वो बुंदेलखंड है हमारे मध्य प्रदेश का, उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे अगर सरकार सजग नहीं हुई। ये जो हमारी दूसरी विधियां हैं, ड्रिप सिस्टम जिसको टपका सिंचाई बोलते हैं, अगर ये नहीं अपनाई गई तो हरियाणा का भी हाल बहुत बदतर होने वाला है।
ठाकुर राम गुलाम जी, जैसे सूखाग्रस्त किसी इलाके को जब घोषित किया जाता है तो उसके कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, तो जैसे हरियाणा का हमने हाल सुना, छत्तीसगढ़ में क्या किसी इलाके को क्या सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, और क्या उससे फायदा होगा किसानों को?
छत्तीसगढ़ में 117 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। अब उसमें उनकी क्या राजनीति है ये तो मैं नहीं जानता, पर शासकीय तौर पर 117 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। अब सरकार को वहाँ काम का, रोजी रोटी का, पानी का, अनाज का, खाने पीने का, दवाइयों का, पलायन रोकने का, लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या कर रही है सरकार, अभी तक तो कुछ नहीं किए हो। किसान त्राही त्राही है, अब किसान आत्महत्या करना शुरू कर दिए, 15 सबसे ज़्यादा किसान
छत्तीसगढ़ में,
जी छत्तीसगढ़ में। विधानसभा में छत्तीसगढ़ का राजस्व मंत्री ने बयान दिया है 300 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह है 1500 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
ये थे छत्तीसगढ़ से दिल्ली आए एक किसान, जो बता रहे थे उनके राज्य में किसानों की कमर टूटी हुई है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
और अब चर्चा कुछ सियासी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस और बलिया का दौरा किया है। बलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला नाम की एक योजना शुरू की है। इसमें अगले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार यूपीए सरकार की पुरानी योजना को नाम बदलकर अपना बता रही है। बलिया बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम घोषणाओं को उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
अरे आवा ताते दे सके लाला नवा हे राम हो।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी के गायन और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच रविवार को दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलिया जिले से महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर रहे थे।
मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था, न योजना बनाई थी, न फॉलोअप करने की व्यवस्था की थी, यूं ही दिल से एक आवाज उठी और मैंने बोल दिया।
लेकिन शाम को ही कांग्रेस पार्टी ने इस योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई का बयान आया कि यूपीए सरकार इस योजना को 4 साल पहले ही शुरू कर चुकी थी और इसके लिए बजट में पैसे भी जारी हो चुके थे। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान ने बीबीसी को बताया,
2010 में यूपीए 2 की सरकार ने फ्री एलपीजी कनेक्शन वीकर सेक्शन को, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को देने की एक योजना तैयार की थी, जिसमें 2010-11 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री महोदय ने टोकन मनी के तौर पर बजट में प्राविधान भी किया था। तो उस योजना के तहत उस समय के तत्कालीन राज्य मंत्री, पेट्रोलियम राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सीतापुर और लखीमपुर के कुछ एरियाज में 1,00,000 फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे गए थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसी योजना को नाम बदलकर अपनी योजना बता रहे हैं।
दरअसल मोदी सरकार पर ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं कि यूपीए शासनकाल की योजनाओं को नाम बदलकर ये सरकार उसका श्रेय खुद ले रही है। इस बारे में जब भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक से बात की गई तो उनका कहना था,
अगर हम जन सरोकार से जुड़े विषयों को जनता तक ले जाते हैं और जनता को लाभान्वित करते हैं तो लोकप्रिय सरकार का ये काम होता है। ये अवसर उनके पास भी था, अगर उनकी योजना थी तो उन्होंने उसको बेहतर ढंग से लॉन्च क्यों नहीं किया। कुछ लोग श्रेय लेने के चक्कर में पड़ रहे हैं कि साहब हमारी योजना थी, दूसरे की योजना थी, लागू किया, हम इस पर पड़ते ही नहीं।
यानी विजय बहादुर पाठक भी साफ तौर पर इनकार नहीं करते कि ये यूपीए सरकार की योजना नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों से मौजूदा सरकार की तुलना की उससे ऐसा कहीं नहीं लगा कि उसने किसी पुरानी योजना को हड़पा है।
1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है, इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। मेरे भाइयों बहनों, हमने एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया।
उत्तर प्रदेश की एक दिन की यात्रा के दौरान कल नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाओं की भी शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने हालांकि अपनी यात्रा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ने की अटकलों को खारिज किया।
हम कोई चुनाव का बुगल बजाने नहीं आए हैं, ये बुगल तो मतदाता बजाते हैं, हम बिगल बजाने नहीं आए।
लेकिन जानकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ई नौका की शुरुआत करके आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण निषाद समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश की और अपने भाषणों में बार बार गांधी परिवार पर हमला बोला, उससे उनके दौरे को चुनावी दौरे की शुरुआत समझने में कोई संदेह नहीं रह जाता। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उधर बिहार की राजधानी पटना में भी कल काफी सियासी गहमा गहमी रही। पटना पहुंचे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को विपक्षी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, बदले में उनकी पिटाई हुई, कपड़े फाड़े गए। मंच से कन्हैया ने प्रधानमंत्री मोदी पर शब्दों के तीर चलाए तो भाजपा ने कन्हैया को राष्ट्रीय जनता दल के पुराने समीकरण याद दिलाए। सुनिए नीरज सहाय की रिपोर्ट।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार शनिवार को जब अपने गृह प्रदेश बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने उनका हीरो की तरह स्वागत किया और उनके लिए भारी भरकम सुरक्षा का इंतजाम भी किया। पहले दिन कन्हैया कुमार ने CPI पार्टी के पटना दफ्तर में प्रेस को संबोधित किया और बिहार में शराबबंदी लागू करने का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी को व्यवहारिक नहीं बताया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के आवास पर जाकर उनसे भेंट भी की। वहीं दूसरे दिन रविवार को कन्हैया कुमार ने राजधानी पटना के एक सभागार में AISF और AIYF द्वारा आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने PM मोदी पर अपने आरोप और हमले दोहराए।
कन्हैया कन्हैया मत कहिए, नहीं तो सुनने में मोदी मोदी लगने लगे। देश को इस प्रवृत्ति से आजादी चाहिए और समाजवादी राजनीति को स्थापित करना है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ।
लेकिन संबोधन के दौरान ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। हंगामा होने पर अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक कन्हैया कुमार के लोगों ने विरोध करने वाले युवकों की पिटाई कर दी। हंगामा शांत होने के बाद कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर अपना हमला जारी रखा।
कहते हैं आजादी मांग रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग डिस्टर्ब होने वाले लोग नहीं हैं। आप लोगों को इस बहस को स्थापित करना पड़ेगा कि देश के लिए सही क्या है और देश के लिए गलत क्या है।
भारतीय जनता पार्टी विरोधी राजनीति के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार की पटना यात्रा विरोध और विवाद से अछूती नहीं रही। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो से उनके भेंट करने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति प्रकट की। पार्टी के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के अनुसार,
बिहार का ही नेता माले से जुड़ा हुआ चंद्रशेखर, जो उस समय वह भी जेएनयू का अध्यक्ष था और उसकी हत्या बिहार में उसी समय जंगल राज जिसको कहा जाता है था, राजद की सरकार और राजद के नेताओं पर आरोप लगा था जिसकी हत्या कर दी गई थी, आज उसी नेताओं के साथ कन्हैया जाकर के मिल रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो ये कन्हैया पूरी तरह से जो है से डिरेल्ड हो गए हैं।
जिस तरह कन्हैया कुमार को महागठबंधन के नेताओं ने हाथों हाथ लिया है, उससे बिहार में अपना जनाधार खोता वाम दल उत्साहित है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव कम करने में कन्हैया का इस्तेमाल कितना कारगर होगा। नीरज सहाय, BBC पटना।
खबर सच है अगर BBC पर है।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है 2 मई, दिन सोमवार, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। वात्सल राय कई अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, और जो मैं खबरें देख रहा हूँ उसमें उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उसको सारे अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। द हिंदू ने इसको लीड खबर बनाया है और वायुसेना हेलीकॉप्टरों के आग बुझाने के अभियान में शामिल होने का जिक्र किया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर तस्वीर छापकर आग की गंभीरता की जानकारी दी है। और ये दिलचस्प कार्टून देखिए, जनसत्ता में जो छपा है, इसको जो आग लगी है जंगलों में उसको उत्तराखंड के राजनीतिक संकट से जोड़ दिया गया है, जिसमें सभी पक्ष पूछ रहे हैं कि आग कब बुझेगी।
सियासी संकट की आग अभी तक जल रही है।
जी, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर की बात करें तो इस अखबार ने कोल स्कैम से जुड़ी खबर को पहली खबर बनाया है। खबर का हेडलाइन कहता है, सम करप्ट CBI कलीग टुक ब्राइब टू फिक्स कोल केसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राइट्स टू चीफ एजेंसी चीफ। हेडिंग से ही खबर के बारे में जानकारी मिल जाती है। जनसत्ता ने भी कोल स्कीम से जुड़ी खबर को लीड स्पेस में जगह दी है। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि कोड़ा ने की थी जिंदल समूह को कोला ब्लॉक आवंटन की सिफारिश, ये खबर का हेडर है। कोड़ा से आशा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से। द हिंदू की एक खबर है जिसमें वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन के हवाले से बताया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मीटिंग में भी क्रिकेट की ही तरह स्लेजिंग होती है, जैसे क्रिकेट मैदान पर स्लेजिंग होती है उस तरह से इन मीटिंगों में भी स्लेजिंग देखने को मिलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी लीड खबर में बताया है कि जल्दी एक नया कानून आ सकता है जो दिवालिया लोगों को चुनाव लड़ने से रोकेगा, इस तरह की सिफारिश की गई है। ज्वाइंट पैनल है संसद का, उसने ये की है। और इसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर यह भी बताई है कि गवर्नमेंट का अब जो स्टैंड है पाकिस्तान और हुर्रियत नेताओं के बीच बातचीत का, वो भी बदल गया है। कल प्रधानमंत्री बलिया में थे, उस खबर को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पत्रकारों के लिए जो डिनर दिया था उस खबर को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है।
बहुत शुक्रिया वात्सल। और कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी, लेकिन पहले एक झलक उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नज़र।
संसद के मौजूदा सत्र में आज से कामकाज का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है। सरकार का मुख्य एजेंडा वित्तीय विधेयकों को पास कराना और अनुदान मांग पर चर्चा का है, लेकिन बीते हफ्ते की तरह इस बार भी अगस्ता वेस्टलैंड मामले समेत कुछ अन्य मामलों को लेकर हंगामा हो सकता है। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में CBI आज वायुसेना के पूर्व प्रमुख SP त्यागी से पूछताछ कर सकती है। CBI ने त्यागी से आज पेश होने के लिए कहा है। उधर अमरीका का एक स्वतंत्र धार्मिक आयोग आज अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेगा। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस के मुताबिक उसकी रिपोर्ट में 30 से ज्यादा देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इन देशों में भारत भी शामिल है। और खेलों की दुनिया में IPL में बेंगलुरु में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा।
और आइए अब सुनते हैं लंदन के मेयर के चुनाव की चर्चा पाकिस्तान में क्यों हो रही है।
दक्षिण एशिया को ब्रिटेन से भले 70 वर्ष पहले ही मुक्ति मिल गई हो, मगर दिल है कि लंदन में ही अटका रहता है। आज भी तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। 5 मई को लंदन के मेयर का चुनाव हो रहा है, मगर इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में है। वैसे तो 21 उम्मीदवार लंदन का मेयर बनना चाहते हैं, पर सबसे कड़ा मुकाबला जिन दो प्रत्याशियों के बीच है उन दोनों का टांका पाकिस्तान से जुड़ा है। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान पाकिस्तान में पैदा हुए। 70 के दशक में वो अपने माता पिता और 6 बहन भाइयों के साथ लंदन पहुंचे, गरीब इलाके के काउंसिल अपार्टमेंट में ठुस ठुसा के गुजारा करते रहे। अब्बा लंदन की डबल डेकर लाल बस के ड्राइवर हो गए, अम्मा गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगीं और एक भाई मोटर मैकेनिक बन गया और एक दिन सादिक खान वकील हो गए और मानव अधिकारों की संस्थाओं के साथ जुड़ गए। 2005 में लेबर पार्टी के उम्मीदवार बने और जीत के मेंबर पार्लियामेंट बन गए। प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के मंडल में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए। यूं पहले ब्रिटिश मुस्लिम मंत्री बनने का एजाज हासिल किया। सादिक खान के मुकाबले में जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट हैं वो सादिक खान से बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। अरबपति कारोबारी जिमी गोल्डस्मिथ के सपुत्र जैक गोल्डस्मिथ, जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए, गांजा पीने के चक्कर में 16 वर्ष की बाली उमरिया में महारईसों के स्कूल ईटन से निकाले गए, फिर अब्बा ने व्यापार में शामिल कर लिया। सादिक खान को लंदन ऐसे याद है जैसे हाथ की लकीरें, पर जैक गोल्डस्मिथ ने लंदन ट्यूब में शायद कभी सफ़र किया होगा, वो ठीक से नहीं बता सकते कि हीथ्रो एयरपोर्ट पिकेडली लाइन जाती है कि जुबली लाइन, कौन सा म्यूजियम लंदन में कहाँ है शायद शोफर को मालूम हो, कौन सा मशहूर फुटबॉल स्टेडियम लंदन में कहाँ है शायद वहाँ, नहीं नहीं शायद यहाँ, पता नहीं, आप मेरे बॉडीगार्ड से क्यों नहीं पूछ लेते। जैक गोल्डस्मिथ की बहन जमायमा हमारे इमरान खान साहब की पत्नी रह चुकी हैं, यानी जैक इमरान के दो बेटों के मामू भी हैं, इसलिए इमरान खान की मजबूरी है कि वो लंदन में जैक गोल्डस्मिथ की चुनाव कैंपेन में हिस्सा लें और पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के हकूक के चैंपियन भी बने रहें जो सादिक खान की तरह ज़िंदगी में नीचे से ऊपर तक पहुंचने के जीवन संघर्ष में जुटे हुए हैं, यानी शेर भी नाराज़ ना हो और शिकारी भी राज़ी रहे। इसे ही तो कहते हैं राजनीति, जैसा देश वैसा भेस।
ये थे वस्तुल्लाह खान और अब चर्चा आईपीएल क्रिकेट की। कल आईपीएल में दो मुकाबले खेले गए, जहां पहले मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने गुजरात लॉयंस को और दूसरे मुकाबले में मुंबई ने पुणे को मात दी। मुंबई की जीत में कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 85 रन बनाए। रोहित शर्मा की पारी के बारे में हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरफ से बात की।
अगर एक व्यक्ति एक सिरा में खड़ा रह जाता है तो जीत वहीं से सुनिश्चित होना शुरू हो जाती है। उनके साथ पार्थिव पटेल आए थे जिन्होंने 21 रनों का योगदान दिया, लेकिन उसके बाद रायडू और बटलर दोनों ने 22 और 27 रन बनाए, मगर रोहित ने शीट एंकर की भूमिका निभाते हुए जो लक्ष्य था 159 रनों का 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे पुणे की टीम ने, उसको पार कर लिया मात्र 18.3 ओवरों में। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। रोहित शर्मा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब वो उनकी आंखें जम जाती हैं वो थाम लेते हैं बल्ला हाथ में और ठान लेते हैं कि मैं वहां खड़ा रहूंगा, तो फिर किसी को टिकने नहीं देते।
और अगर इससे पहले खेले गए मुकाबले की बात करें तो आपको लगता है कि संजीवनी मिली है किंग्स इलेवन पंजाब को जिस तरह से उन्होंने,
और संजीवनी लेकर जो आया है वो मुरली बजाने वाला विजय है। पहली बार कप्तानी करते हुए नए कप्तान के साथ टीम उतरी थी और मैदान पर, और किंग्स इलेवन पंजाब जिसके बल्ले से या गेंद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी किसी को भी पूरे आईपीएल में, उसने एक ऐसी टीम को मात दी जिस टीम के बारे में कहा जाता था कि सुरेश रैना के नेतृत्व में उनको हराना बहुत मुश्किल होगा। और जिस प्रकार से किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान मुरली विजय ने बॉलर्स को रोटेट किया और अपनी तरफ से तो रन बनाए ही, जिस प्रकार से उन्होंने मैदान को संभाला, गेंदबाजों को रोटेट किया, क्षेत्र रक्षण जमाया, उन सबको देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगा कि एक और कप्तान का मटेरियल है यहाँ पे जिसको भारतीय टीम भी फ्यूचर में भविष्य में उसको इस्तेमाल कर सकती है।
वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। और कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम आज भी जारी रहेगा। राज्य का 2,269 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के पास कल रात दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 70 लोगों को मामूली चोट आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि सीरिया में संघर्ष पर रोक लगाने के प्रयासों में वो रूस की मदद लेंगे। राजनीतिक सुधारों की मांग को लेकर इराक की राजधानी बगदाद में संसद के बाहर जमे प्रदर्शनकारी वहां से हटने लगे हैं। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी AfD ने साफ तौर पर इस्लाम विरोधी नीति अपना ली है। पार्टी के स्टटगार्ट में हुए सम्मेलन में द्वारा कहा गया है कि इस्लाम जर्मनी से संबंध नहीं रखता। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के पीछे विपक्ष की सत्ता पर काबिज होने की मंशा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ दीजिए अनुमति।